आज है 12 मार्च दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूँ सुशीला सिंह। क्या उद्योगपतियों और किसानों के लिए बैंक की नीतियाँ अलग अलग हैं? उद्योगपति कर्ज लेकर निकल जाते हैं, लेकिन किसान आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? विजय माल्या का करोड़ों रुपए का कर्ज बिना चुकाए विदेश चले जाना किसकी नाकामी है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी इंडिया बोल में बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कोटा संबंधी और सुधार किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को प्रदर्शित किया जा सकेगा और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जा सकेगी। मोदी ने IMF के एडवांसिंग एशिया कार्यक्रम में ये बातें कहीं। इस मौके पर IMF की अध्यक्ष क्रिस्टिना लेगार्ड ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक हालात के लिए जो चुनौती भरा समय चल रहा है, उसमें भारत की हालत काफी बेहतर है। उन्होंने कहा,
In India, enhancing the efficiency of product markets, encouraging private investment,
भारत में उत्पादों के बाजार को बढ़ावा देना, निजी निवेशकों, मूलभूत ढांचे के क्षेत्र को प्रोत्साहन देना और बैंकों की हालत में सुधार। भारत जैसी उभरती और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के लिए माहौल को सशक्त बनाना, इन सब मुद्दों से सफलता से निपटने पर इन ढांचागत सुधारों से एशियाई क्षेत्र में निकटवर्ती और मध्यवर्ती हितों की रक्षा होगी और इसके अलावा इससे क्षेत्र का सभी संभावनाओं का फायदा उठाने का भी मौका बनता है। ये थे क्रिस्टिना लेगार्ड के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तर कोरिया से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से संपर्क टूटने के बाद एक पनडुब्बी को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कई दिनों से उत्तर कोरिया के तट के पास तैनात ये पनडुब्बी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। हाल के दिनों में क्षेत्र में दक्षिण कोरिया और अमरीका के अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास से तनाव बना हुआ है। प्योंगयांग ने इस सैन्य अभ्यास को देखते हुए युद्ध की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उस पर हमले का संकेत मिलते ही वो हमला करने के लिए तैयार है। इराक से आ रही अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिससे 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किरकुक के पास तजा में पहला रासायनिक हमला किया गया था और दूसरा हमला आज सुबह किया गया है, जब इलाके में कई रॉकेट छोड़े गए हैं। ये इलाका चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। बताया जा रहा है कि हमले में घायल लोगों के शरीर पर जलने के निशान हैं और इन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि जिनेवा में रविवार से सीरियाई शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुका है, लेकिन अगर विपक्षी दल 24 घंटे में वार्ता में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुआ तो सरकारी प्रतिनिधि जिनेवा से लौट आएंगे। दमिश्क में सीरिया के विदेश मंत्री वलिद मोअल्लम ने कहा कि अगर राष्ट्रपति के मुद्दे पर कोई बातचीत की गई तो वार्ता विफल हो जाएगी। विपक्ष के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार बातचीत शुरू होने से पहले ही इसे विफल बनाना चाहती है। BBC समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। BBC इंडिया बोल।
हम आपके सामने दो तस्वीर रखते हैं, एक छोटे कर्ज में डूबे किसान की जो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, और दूसरी ऐसे उद्योगपति की जो करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर आराम से भारत छोड़ देते हैं। पिछले 20 सालों में करीब 3 लाख किसानों के ने कीटनाशक पीकर या फांसी के फंदे को गले लगाकर अपनी जान दी, लेकिन कर्ज से उसके परिवार का पिंड नहीं छूटा। भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या के 2/3 मामले रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ सवाल ये है कि किसान कुछ हजार या करीब लाख रुपए का कर्ज लेकर आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाते हैं, वहीं उद्योगपति अपने कारोबार के लिए करोड़ों का कर्ज लेकर भी आजाद घूमते हैं। इसमें जवाबदेही किसकी है, किसानों की, उद्योगपतियों की, बैंकों की या फिर सरकार की? इन्हीं सभी मुद्दों पर इंडिया बोल में आज बहस होगी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं चंडीगढ़ से कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा, योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान से जुड़े जनार्दन पिंपले और हमारे श्रोता, आप सभी लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है। और सीधे पहले चलते हैं हमारे बीबीसी के श्रोता जो सालों से हमें सुन रहे हैं, सीताराम के पास, जो कि एक किसान भी हैं, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जब कर्ज लिया तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीताराम जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। सीधा मुद्दे पर आइए, आप जानते हैं, बताइए।
नमस्कार मैडम, मैं सीताराम राय, ग्राम मथुरा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी
जी, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जब बैंक में पहले जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का कर्ज पाना ये बैंक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, आप उसके अधिकारी नहीं है कि आपको कर्ज मिल ही जाएगा।
जी।
पहली बात। दूसरी बात जो है कि जो वेटनेस होता है उसको कहा जाता है कि भाई अगर उससे नहीं कर्ज वसूला गया तो जो बगल में जो गवाह हैं उनसे कर्जा वसूला जाएगा, ऐसा प्लेट लगाया हुआ है कि ये इस सन में जो है फला ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है।
जी,
तो हम मान लीजिए हमको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की जरूरत थी तो 10 कम से कम हमारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ जो जमीन है उसका मैं खतौनी निकलवाया, पैसा बनवाया, फिर जितने क्षेत्र के बैंक है चाहे इलाहाबाद।
लगता है सीताराम जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। सीताराम जी की जो बात से मुझे समझ में आ रहा था कि वो बताना चाह रहे थे कि किसानों को कितनी दिक्कत आती है जब वो कर्ज लेने की कोशिश करते हैं। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। कहाँ से बोल रहे हैं?
बीकानेर से।
जी बीकानेर से, आपका क्या नाम हुआ?
जी दिग्विजय सिंह बोल रहा हूँ मैं।
जी दिग्विजय जी, बताइए, आपको विषय पता है, यहाँ पर सीताराम जी हमसे जुड़े हुए थे जो एक किसान थे, जो बता रहे थे कि जब कर्ज लेना होता है तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप क्या करते हैं?
जी खेती बाड़ी करता हूँ मैडम।
खेती बाड़ी करते हैं, तो कभी आपने कर्ज लिया है किसान किसानी के लिए, खेती के लिए?
जी मेरे पिताजी ने लिया था कर्ज, उसमें काफी दिक्कत आती है, और जो अपने केसीसी होती है किसान कार्ड क्रेडिट
किसान क्रेडिट कार्ड,
हाँ जी, उसको लेकर बनाना पड़ता है, उसको कर्ज करते हैं तो मान जो जमीन की जितनी मान सीमाएं होती है, मान के कितने बीघे उसी हिसाब से लिमिट बनती है। जी हमने कई बार बैंक से लिमिट बनवाने की कोशिश की और उसके अंदर बोलते हैं कि हम लिमिट नहीं बता सकते हैं, और दूसरी तरफ यह है कि विजय माल्या जो अपने कर्ज लेकर फरार है वो कर्जाइती है, उसे भी बैंक दोबारा ऋण दे रही है, और किसानों क्यों नहीं,
किसानों को क्यों नहीं? हालांकि ये एक श्रोता का कहना है कि विजय माल्या फरार है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि ये बीबीसी ने नहीं कहा है। हम चलना चाहेंगे जनार्दन पिंपले के पास, जो किसान से जुड़े जो समस्याएं हैं उनको किसानों को लेकर काम करते रहे हैं। पिंपले जी, आपका स्वागत है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान खेत का टुकड़ा गिरवी रखकर कर्ज लेता है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जो हैं आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सुने ही, ये बताइए कि कर्ज लेने में इतनी दिक्कत क्यों पेश आती है किसानों को?
नमस्ते मैडम, मैं महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा सूखा पीड़ित एरिया जो है मराठवाड़ा एरिया, यहाँ सूखा 3-4 साल से सूखा गिर रहा है, मैं स्वराज अभियान से भी जुड़ा हूँ। मैडम इधर ऐसा है कि किसानों को पहले से बहुत परेशान किया जाता है लोन के लिए, नेशनलाइज बैंक जो है नोड्यूज मतलब बेबाकी प्रमाण पत्र लाने को कहती है, किसान जो तहसील में रहता है वो तहसील के करीबन तहसील का एरिया 50 से 70 किलोमीटर का होता है, और वो तालुका में करीबन कोऑपरेटिव शेड्यूल बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटीज, नेशनलाइज बैंक, इस प्रकार के 30-40 बैंक होते हैं, तो किसान को 50,000 कर्जा लेने के लिए ये सब बैंक का बेबाकी लाने के लिए बताया जाता है, वहीं से किसान का हैरेसमेंट चालू होता है, और इस हैरेसमेंट की वजह से वो प्राइवेट मनी लेंडर की तरफ ढकेला जाता है, उसको बेबाकी लाने के लिए कहा जाता है। 70 किलोमीटर के दायरे में बाकी का बैंक होता है।
प्राइवेट लेंडर्स का किससे आपका मतलब है कि निजी कर्जदाता जो होते हैं, जो अपनी मन मुताबिक जो है ब्याज दर पर किसानों को कर्ज देते हैं। जी
मन मुताबिक, मतलब वो 5% प्रति सैकड़ा प्रति माह लगाते हैं, जो कि बैंक 12 से लेके 13-14 प्रति वर्ष लगाता है। और किसान को निजी साहूकार जो होते हैं वो 5% प्रति माह लगाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है, मतलब 60% पर एनुअल होता है निजी साहूकार का कर्ज, और यही जो कर्ज है बैंक का 12 से 13% होता है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड 6 महीने के अंदर अगर किसान क्रेडिट कार्ड पे अगर लोन लेता है तो उसको 7% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, बाकी का जो है 5% वो गवर्नमेंट पे करती है सब्सिडी के रूप में। मगर इधर 3 साल से सूखा पड़ रहा है, तो सूखे की वजह से 6 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड वो पे नहीं कर पाता है।
जी, तो और जब वो पे नहीं कर पाता है, जी आप किसानों के लिए काम करते रहे हैं, ये बताइए कि जब वो इस तरह का डिफॉल्टर साबित हो जाता है तो किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है?
फिर 12.5% का कर्ज चालू हो जाता है, 12.5% से 13% तक उसको लोन लगता है, वो डिफॉल्टर हो जाता है। तो उसके बाद में उसको इंस्पेक्शन चार्जेस लगते हैं, 1,500 से 2,000 पर 6 महीने उसको इंस्पेक्शन चार्जेस लगाती है बैंक। उसके बाद में उसको डिफॉल्टर करके एसएमएस जाता है तो उसको 540 रुपए पर एसएमएस उसको चार्ज लगाते हैं। और ऐसा वो करीबन 20-25% चला जाता है डिफॉल्टर होने के बाद,
यानी कि एक तरह से फाइन पे फाइन, जुर्माने पे जुर्माना उस किसान पर लगता चला जाता है।
दिक्कत यह है मैडम, इंस्पेक्शन चार्जेस और जो उसको डिफॉल्टर का एसएमएस जाता है 540 रुपए का, और वो जो उसको 2,000 रुपए इंस्पेक्शन चार्जेस लगाया जाता है, उसके ऊपर 14.5% सर्विस टैक्स लगाया जाता है, और उसके ऊपर उसको ब्याज भी चालू रहता है 12.5%। और इसकी वजह से किसान बैंक में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। शाहूकार निजी शाहूकार निजी जो शाहूकार रहते हैं उनके बराबर से ये कर्जा का ये चालू हो जाता है।
जी जनार्दन जी, आप अपनी आप हमारे साथ बने रहिए। मैं देवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपने जनार्दन पिंपले की बात सुनी। तंजावुर के किसान की अभी हाल ही में पिटाई हुई है, 2 दिन हुए हैं, क्योंकि वो 1,34,000 का कर्ज जो है नहीं चुका पाया। अगर भारत की बात की जाए तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसानों की ऐसी स्थिति, मैं कहूंगी किसानों की ऐसी दुर्गति क्यों?
अभी जो हम सुन रहे थे अपने किसान भाई की बात वहाँ से पिंपले साहब की, कि एक एसएमएस जो नोटिस आता है एसएमएस पे, उसके लिए अगर 540 रुपए उसको देने पड़ते हैं, तो आपके सामने स्पष्ट है कि भाई सिस्टम जो है वो कितना एक्सप्लॉयटेटिव बना हुआ है किसान के लिए, कि किसान को जितना भी आप चाहें उतना ही आप उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं बैंकों द्वारा। एक तो ये बात है। ये क्यों, आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों, मैं तो सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ कि कम से कम जो विजय माल्या साहब के जाने से एक जो कंट्रोवर्सी हुई है देश में, उसमें कम से कम ये तो कहीं सोच में आए कि भाई जो खेती के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसानों से अन्याय हो रहा है, उसमें कहीं पर हम कोशिश करें कि उसको सिस्टम को ठीक करने की। पर अभी तक तो लगता तो नहीं है, अभी तक तो सारा फोकस कहीं और पे ही है, लेकिन ये करने की बहुत जरूरत है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो किसान को, जैसा उन्होंने ठीक कहा कि उसको खूब उसमें क्या कहते हैं उसको स्ट्रेस में जाना पड़ता है, उसको कोशिश की जाती है, उसको 50 किलोमीटर 7 किलोमीटर सब अपने बैंकों से वो नो ड्यू लेके आएगा। लेकिन आपने देखा है कि विजय माल्या साहब ने 17 बैंकों से लोन लिया था, तो कहीं पर उनको नो ड्यू तो देने नहीं पड़े एक दूसरे के बैंक के लिए कि भाई वो किसी बैंक में कर्जदार नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये किसानों के लिए क्यों है, मुझे लगता है कि इस पे सोच करने की बहुत जरूरत है, और जब तक इस पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे तो शायद का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। उसके लिए अभी जैसा आपका हल्ला बोल जो कार्यक्रम है, बोलना ही पड़ेगा, तभी जाके आवाज जो है बुलंद हो सकती है।
जी, इंडिया बोल कार्यक्रम है ये। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। विजय माल्या के मुद्दे पर भी रुक करेंगे हम लोग, पहले कॉलर देख लेते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं।
नमस्ते मैडम।
जी,
मैं मुक्ताराम खुद पोखरा सर चौड़न जिला बाड़मेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
जी मुक्ताराम जी,
मेरा कहना ये है कि मैडम इस विजय माल्या मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ लिए दिए बिना इतना बड़ा ये मामला नहीं हो सकता है। और पहले से ये व्यक्ति दिवालिया था तो बैंकों ने इतनी बड़ी कर्ज क्यों दिया इसको?
जी ये कर्ज नहीं देना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ताराम जी अपनी बात रखने के लिए। हम इस सवाल का भी जवाब तलाशेंगे, देवेंद्र जी से भी पूछेंगे। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं? लगता है इन्हें हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। विजय, हाँ विजय माल्या का रुख करते हैं। देवेंद्र जी, विजय माल्या जैसे उद्योगपति जिन्होंने किंगफिशर एयरलाइन कंपनी बनाई जो बंद हो चुकी है, उन पर जैसा कि आपने भी बताया कि 17 कर्जदाताओं का करीब 7,800 करोड़ रुपए बकाया है, स्टेट बैंक ने के करीब 1600 करोड़ रुपए बाकी हैं और कई बैंक हैं जिनका जिनसे उन्होंने रुपया लिया, बहुत ही लंबी फहरिस्त है, वे अब विदेश जा चुके हैं और कहते हैं कि भगौड़ा नहीं हूं मैं, इतनी बड़ी राशि लेकर चुपचाप निकल जाना है, ये पहला मामला तो नहीं है और किसी की नज़र में भी नहीं आया। जी देवेंद्र जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है देवेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ा है। जी अपना नाम बताएं।
सागर खान नाम है मेरा।
जी सागर जी,
मध्य प्रदेश से विदिशा जिले से बोल रहा हूँ।
जी सागर जी बताइए।
अरे मैडम जी, हमारे यहाँ एक जो क्रॉप लोन दिया जाता है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर
खेती के लिए जो दिया जाता है,
0% ब्याज भी देते हैं वो, लेकिन उसकी डेट जो हमने 28 मार्च रखी है बनने की, और हमारे क्षेत्र में उस टाइम तक फसल आती, उनकी खरीदी खुद 16 मार्च शुरू होती है, सरकारी खरीदी वो करवाते हैं वो, इस वजह से किसान को बड़ी दिक्कत आती है और एनकेएन प्रकरण फिर वो अपना ब्याज सहित कर चुकाता है।
जी तो ये इस पर किसी से आपकी बात हुई है? वहाँ पर किसानों के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं।
नहीं, हर मुद्दे पर बात की है
जी,
लेकिन वो कहते हैं पिछली बार वो हमारे कृषि मंत्री थे डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया साहब
जी,
उनसे भी हमने मुलाकात की थी, तो वो कहना नहीं वो तो नियम ऐसे ही है साहब।
नहीं तो किस तरह से इस आवाज़ को उठाया जा सकता है? सागर जी, आप ये दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो किस तरह से किसानों की आवाज़ को और मुखर किया जा सकता है, आप बताएं।
अरे किसानों की बात को मुखर तो किसान ही कर सकते हैं, जैसे किसान अगर एक यूनिटी हो तो किसान असंगठित रहे, तो संगठित नहीं है, उनके अंदर एजुकेशन की बहुत कमी है, और फिर वो एक स्वार्थ भी उनके अंदर रहता है कि हमारा काम अगर बन गया तो हमारे दूसरे किसान से कोई हमें मतलब नहीं है, उस पर क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है,
तो आपको लगता है कि
बिखराव है किसानों के अंदर,
बिखराव है किसानों में, किसान भी एकजुट नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, हम विजय माल्या का मुद्दा उठा रहे थे कि वो उद्योगपति हैं किंगफिशर, उन्होंने कंपनी खरीद बनाई और उसके बाद वो बंद हो चुकी है, जैसा कि आपने भी बताया कि 17 कर्जदाताओं का करीब 7,800 रुपये उन पर बकाया है, स्टेट बैंक के करीब 1600 करोड़ रुपये बाकी हैं उन पर, लेकिन वो बोलते हैं विदेश चले जाते हैं चुपचाप, बोलते हैं भगौड़ा नहीं हूँ, इतनी बड़ी राशि लेकर चुपचाप निकल जाना ये पहला मामला तो नहीं है, और मुक्ताराम भी जी जैसे बोल रहे थे कि ये क्या बताता है?
ये बिल्कुल यही है जो आपने जो ठीक फरमाया, जो किसान कुछ जो आपके साथी जो बोल भी रहे थे वो भी ठीक बोल रहे थे कि ये बेसिकली ये है कि भाई सिस्टम जो है वो अमीर आदमी के लिए कितना जो है बेनिवोलेंट है या कितना उनके लिए काइंड है, ये इससे बताता है कि जब बैंकों का बड़ी कंपनियां जो है जब उसको नहीं दे पाती हैं या डिफॉल्ट करती हैं, जिसको NPA कहते हैं, वो डिफॉल्ट करती हैं, तो जो आदमी डिफॉल्ट करता वो घबराता नहीं है, वो बैंक घबराता है कि अब क्या होगा मेरा। अब देखिए जैसे कि अगर आपने किसान है या आप छोटे कर्जदाता भी हैं, जैसे कई लोग कार लेते हैं या घर का वो कर्जा लेते हैं, अगर कार का आप नहीं पे करते हैं तो गुंडे भी आ जाते हैं आपके घर पे लेने के लिए, वसूल करने के लिए, लेकिन बहुत बड़े जो कंपनियां होती हैं उसमें बैंकों को घबराना पड़ता है, उनको अपना दिखाना पड़ता है कि भाई ये लॉस में क्यों जा रहा है, वो NPA क्यों हुआ है, तो उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जो कर्जदाता जिसको कर्ज दिया गया है वो अपना फी घूमते हैं, ये तो एक बड़ा स्पष्ट हो गया इस बात से।
तो यहाँ क्या कहेंगे कि क्या अलग अलग नीतियाँ हैं, क्योंकि अलग अलग कानून दिखाई देते हैं, जो कंपनियाँ पूरा कर्ज नहीं चुका पाती हैं उनसे जितना वसूल सकते हैं किया जाता है और फिर विलफुल डिफॉल्टर घोषित करके उन्हें माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान पर तो ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता, उनसे तो पीछा।
आपको याद होगा कि अभी जब 2008-2009 में सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था कर्जा, तो बेसिकली वो बैंकों का NPA बढ़ रहा था इसलिए किया गया था, लेकिन चलिए 70,000 करोड़ रुपए जो माफ किया गया था उसकी आज आज भी बात होती है, हर जगह बताया जाता है कि हमने किसानों के लिए कितना भला किया, लेकिन अभी आप देखिए पिछले 3-4 साल में ही 3,15,000 करोड़ रुपए तो बैंक जो है माफ कर चुके हैं जो कर्जा आउटस्टैंडिंग था कंपनियों का, और तकरीबन 6,15,000 करोड़ रुपए जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है। इसका मतलब तकरीबन 10,00,000 करोड़ रुपए का जो डिफॉल्ट था बैंकों के साथ। और अभी जो अभी क्रिसल की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि अगले साल के मार्च तक तकरीबन 7,15,000 करोड़ रुपया जो है वो और एनपीए हो जाएगा।
जी, ये जो एनपीए की बात कर रहे हैं हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर बस एक कमेंट सुन लेते हैं। गोविंद शर्मा ने फेसबुक पर लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि उद्योगपति की राजनेताओं के साथ संलिप्तता है, चाहे वो कात्रोकी हो, धर्मपाल तेजा हो या ललित मोदी हो, राजनेता व्यवसायियों के प्रति जवाबदेह हैं, इसी कारण ये सब, वरना माल्या को सूचना ही कैसे मिलती कि उनके खिलाफ वारंट इशू हो गया है। ये फेसबुक पर एक कमेंट भेजा है। आगे भी हम इंडिया बोल में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लेते हैं।
वो अपने देवताओं के लिए रोते हैं।
मैं शिव शंकर भोलेनाथ का बाबा, भोलेनाथ का शंकर, इस बाबे का मैं अपनी जाल दे सकता हूँ इस बाबे के लिए।
वो अपनी बिखरी धरोहर को सहेजना चाहते हैं।
इसका सारा जो ये मंदिर है ये सारा डैमेज हो गया था, फिर हमने हमारी संस्था ने।
वो याद करते हैं खौफ भरी रातों को।
अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाले मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट, आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे।
और जिन्होंने बंदूक उठाई।
भाई देखिए, मैं तो हर बच्चे से यही कहूंगा, भूल कर भी हथियार मत उठाना, क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है। मेरे बच्चों, हमने इस जहर को पिया हुआ है।
पोस्ट कार्ड अपनी धरती से उखड़े 5 कश्मीरी पंडितों के।
रक्त रंजित नृत्य करते हर गली चौराहे और सड़क पर लोग खेल खेल में इकट्ठा।
मैं खुद को अपने घर के बरामदे में तैरता सा देखता हूँ।
इनका भी कश्मीर, बीबीसी हिंदी रेडियो की खास पेशकश। सोमवार 14 मार्च से रोजाना शाम 7:30 बजे दिन भर में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
इंडिया बोल में आप मेरे साथ हैं सुशीला सिंह के साथ, और अब एक हमारे साथ श्रोता बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद गुरफान। गुरफान साहब, आप बहस सुन रहे हैं सारी, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे।
जी मैडम जी, मैं काफी देर से बहुत सुन रहा हूँ, मैं दिन में ही फोन किया था। मैं अपना बात कुछ इस अंदाज में रखना चाहता हूँ। एक छोटा सा लोन केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिस पर की सरकार का काफी कड़ी नजर है, नहीं करने पर बैंक मैनेजर को भी काफी कुछ सुनना पड़ता है। इसके लिए महीना दो महीना यहाँ तक कि साल भी गुजर जाता है, लोन नहीं फिनांस हो पाता है। इस बात का मेरे पास काफी ठोस सबूत भी है। ठीक है मैडम
जी, जी,
और जो आदमी वो दो करना चाहते हैं तो उसे आसानी से लोन दे दिया जाता है। और विजय माल्या जो कि सांसद भी है और शराब का किंगफिशर इतना बड़ा व्यापारी भी है, जो 900 करोड़ रुपए का लोन लिया और बैंक ने उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए सीबीआई गठित किया, इतनी पहली नजर के बावजूद विजय माल्या देश छोड़कर लंदन चला गया। इससे देश के कानून व्यवस्था ऐसा लगता है जो कि बहुत पैसा वाला है
जी,
कुछ भी करना संभव है।
जी मोहम्मद साहब, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपको शामिल करना चाहेंगे। आप एनपीए की बात कर रहे थे, अगर सरकारी बैंकों के रुके हुए कर्ज की पूरी वसूली हो जाए तो वह साल 2016 के रक्षा, शिक्षा, हाईवे और स्वास्थ्य के बजट को पूरा कर सकता है। और इंडिया स्पेंड के एक विश्लेषण के मुताबिक ये फंसा हुआ कर्ज, जिसे बैंकिंग की भाषा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए कहा जाता है, 4,04,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों में भी एनपीए की समस्या है, लेकिन उनके फंसे हुए कर्ज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुकाबले आधे हैं। सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं कि वो बड़े व्यवसायियों की मदद करती है, जैसे कि विजय माल्या के मामले में भी हो रहा है। ये बताइए, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी क्या बैंक के प्रति नहीं है?
आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये भारत में जो आजकल ये डिबेट चल रही है सारे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रोल, जैसे आप कह रहे हैं कि वो चेयरमैन का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं को, वो जानते थे सब कुछ, उसके बावजूद भी उन्होंने अगर लोन दिया है तो वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कि जो लोन लेने वाला था। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि आज तक कभी हमने, क्योंकि चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उस पर कभी हाथ डाला नहीं है, तो इसलिए शायद ये मुश्किल हो पाएगा। लेकिन दुनिया में एक उदाहरण है, आप ये भी जानते हैं कि जब 2008-2009 में जो इकोनॉमिक कलैप्स हुआ था तब भी आपने देखा कि जो बैंकर थे उनके कारण हुआ था, उनको बाद में बहुत बोनस मिले थे। तो यहाँ तो बल्कि सजा के बजाय अब उनको बोनस मिलते हैं। लेकिन आइसलैंड एक ऐसा छोटा सा देश है जिसने अभी पिछले साल 26 बैंकर्स को 74 साल की टोटल सजा सुनाई है। तो ये मुझे लगता है कि एक एक तरह का प्रेसिडेंस हो चुका है कि भाई अब समय आ गया है कि हमें बैंकर्स को भी इसमें कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है।
और ये जो बैंक संकट दिखाई देता है उसका असर हम लोगों, आम लोगों पर भी पड़ता है टैक्स के जरिए।
जी वो इसलिए देखिए कि जो जितना भी पैसा बैंक का अगर ये इस तरीके से राइट ऑफ होता है तो बेसिकली वो टैक्स पेयर्स का पैसा है जो सरकार बैंक्स में इन्फ्यूज करती है। अब की बार सरकार ने कहा है कि अगले 4 साल में 70,000 करोड़ रुपया बैंकों की हालत ठीक रखने के लिए सरकार उसमें डालेगी, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटल बैंकों को जो सरकारी बैंक हैं PSU जिसको कहते हैं, वो जो बैंक है PSU बैंक हैं उनको तकरीबन 4,00,000 करोड़ रुपया चाहिए अगर उनको अपने बैंकों को ठीक ठाक चलाना है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा हमारी जेब से जाएगा और मार्केट से वो उठाएंगे। तो बेसिकली हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो पैसा हमारा है अगर वो राइट ऑफ कर रहे हैं या कोई छोड़ के, जैसे अभी विजय माल्या जी की बात हो रही है, तो
लगता है हमारा संपर्क उनसे फिर से टूट गया है। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ 1800 पे दो कॉलर जुड़े हुए
हैं। हेलो
जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं बाड़मेर से कितनौरिया गांव से पठान खान बोल रहा हूँ।
जी बताइए, आप पूरी बहस सुन रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है डिफॉल्टर्स की, जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं किसान, उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है।
सुशीला जी, ऐसा है कि जो सियासत है, सियासत का ये मामला है, सियासत तौर से संपर्क विजय माल्या का था और ललित का भी था।
जी, ललित मोदी का मामला अलग था, ये विजय माल्या का मामला अलग है। जी,
ये इस कारण से, सियासत के कारण से ऐसा हो रहा है। इन लोगों का सियासत वालों से संपर्क है, इस वजह से ऐसा काम हो रहा है। किसानों को जो 1,00,000 का भी कर्जा नहीं देते हैं, इनको 9,00,000 करोड़ रुपए के कर्जा दे देते हैं। सोचते भी नहीं, बैंक वाले भी नहीं सोचते हैं और जो नेता साहब है वो भी नहीं सोचते।
जी, बैंक की जिम्मेदारी पर अभी बात हो ही रही थी, आपने अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं, समय बहुत कम है।
हेलो
जी, हम देवेंद्र जी के पास लौटते हैं। देवेंद्र जी, बहुत कार्यक्रम में अब समय कम है। सरकार एक तरफ नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने की बात करती है और दलील देती है कि इससे रोजगार पैदा होंगे, वहीं दूसरी तरफ आज ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रमुख कोष की जो क्रिस्टीना लगार्ड हैं, उन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी दी जाती है उसको उन्होंने कम करने की बात की है। तो बदलते मौसम की मार झेल रहे किसानों के हालात कैसे सुधरेंगे?
ये जो इकोनॉमिक सोच है, मुझे लगता है कि वही एक बहुत बड़ा कारण है जो क्राइसिस आज देश के सामने है। और ये जो कहा जाता है कि सब्सिडी को कम करिए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था, अगर आपको याद होगा, कि जो इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए जाते हैं वो भी सब्सिडी होती है। लेकिन ये शब्दावली है सारी, उसका खेल है। गरीब आदमी को पैसा देते हैं तो उसको सब्सिडी कहते हैं, अमीर आदमी को पैसा देते हैं तो उसको इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहते हैं। जब गरीब आदमी बैंक का डिफॉल्ट करता है, किसान पैसा नहीं दे पाता है, तो उसको डिफॉल्टर कहते हैं। और लेकिन जो अमीर आदमी जब नहीं करता, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो शब्दावली है उसके घेरे में हम लोग सब आ जाते हैं। सच्चाई ये है कि अगर वाकई सब्सिडी कम करनी है तो इंसेंटिव्स को कम किया जाए।
यहाँ ये भी जानेंगे कि इस बजट में किसानों पर काफी जोर रहा, चाहे 13 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हों, आधार नंबर जो है उसको जुड़ने की बात की गई है कि बैंक खाते जोड़े गए हैं, आधी आबादी को कवर कर लिया है, लेकिन किसानों की मदद के लिए अभी भी वही पुरानी लचर व्यवस्था चल रही है। बहुत संक्षेप में क्या किया जाए?
कारण सिर्फ एक जो है, वो मेन जो जिस पे फोकस करना चाहिए वो है किसान की आय बढ़ाने का। अब किसान की आय बढ़ाने के लिए कहा गया कि 5 साल में किसान की आय डबल होगी, लेकिन आपको हैरानगी होगी जानकर कि 17 राज्यों में, NSSO का सर्वे कहता है, 17 राज्यों में किसान की आय सारे साल की 20,000 रुपये है। अगर किसान 20,000 रुपये पे अगर जीवित कर रहा है, अपना निर्वाह कर रहा है 17 राज्यों में, तो आप ये देखिए, डबल भी हम करेंगे तो क्या हम करेंगे? हमें तो करने की जरूरत आज है कि उसके हाथ में अगर हम कुछ रिसोर्सेज दें ताकि वो आत्महत्या ना करे, कर्जे पर डिपेंड ना हो, उसकी इनकम होनी चाहिए। तो इनकम पर फोकस करना जरूरी है,
तभी किसानों की स्थिति सुधर सकती है। ये थे कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा और योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान से जुड़े जनार्दन पिंपले और हमारे श्रोता कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कोटा संबंधी सुधारों की वकालत की है। उन्होंने कहा, ज्यादा बदलावों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जा सकेगी। उत्तर कोरिया से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते से लापता हुई एक पनडुब्बी की तलाश जारी है। अमरीका से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी डूब चुकी है। इराक से आ रही अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के रासायनिक हमले में एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ इंडिया बोल में आज बस इतना ही। घटना चक्र में 9:30 बजे ताजा तरीन खबरों के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।